बहुत बहुत धन्यवाद विशु भाई। रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा सादर सप्रेम साईराम। यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप और मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सत्यसाई बाबा जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आप सभी को हमारे आज के साप्ताहिक सीधे प्रसारण के अंतर्गत हिंदी भाषा में होने वाले प्रसारण पर आमंत्रित करता हूं। प्रिय श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम में श्री सत्यसाई महाविद्यालय में प्रबंधन विभाग के शिक्षक डॉक्टर दीपक आनंद जी के अनुभवों के प्रसारण के पश्चात श्री रविन्द्र ग्रोवर जी द्वारा पत्रम पुष्पम फलम तोयम में निहित गूढ़ अर्थ पर एक वार्ता भी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के मध्य आप एक भजन सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम के शुभारंभ में डॉक्टर दीपक आनंद जी के अनुभव सुनते हैं।
ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार व मेरे सब भाई बहनों को मेरा प्रेम भरा साई राम। इस अवसर को शिरोधारी करते हुए मेरी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि अगले कुछ एक मिनट अपने हृदय के द्वार को खोलकर इन बहुमूल्य अनुभवों को शांत मन से मन में उतारने का प्रयास करें। परंतु ये अनुभव मेरे भी नहीं हैं, ये तो भगवान के प्रदान किए हुए कुछ बहुमूल्य रत्न हैं जो मैं आपसे बांटना चाहूंगा। क्योंकि भगवान कहते हैं जो हम बांट देते हैं उसकी हमेशा वृद्धि होती है और जो कुछ हम अपने आप में समेट लेते हैं, अपनी संकीर्णता में समेट लेते हैं, उसका ह्रास निश्चित होता है। अगर गौर करें तो पाएंगे कि कोयला और हीरा दोनों ही कार्बन एटम से बने होते हैं, परंतु मिली हुई सब रोशनी को अपने पास रखने से कोयले को जलकर राख होना पड़ता है, जबकि हीरा मिली हुई सब रोशनी को बाण चमचमाता हुआ राजा के मस्तक पर शोभमान होता है। भगवान बाबा स्वयं कहते हैं वह सब कुछ जो हम दूसरों में बांट देते हैं वही हमारा है, शेष सबके तो हम सिर्फ रक्षक मात्र हैं। एक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन दिनों पुटापर्ती में पाद पूजा का उत्सव चल रहा था। बाबा ने हम कुछ बच्चों को इंटरव्यू रूम में बुलाया और एक और भक्त को भी बुलाया जो कि उस पाद पूजा में सहभागी था। बात करते हुए भगवान बाबा ने उससे पूछा, तुमने पाद पूजा के उत्सव में भाग तो लिया, परंतु क्या तुम जानते हो कि पाद पूजा का सही अर्थ क्या है? उस भक्त ने कहा, भगवान आपके चरण कमलों की निश्चल मन से सेवा करना ही पाद पूजा है। भगवान ने कहा, नहीं वत्स, इस बात को समझ लो कि जब अवतार धरती पर अवतरित होता है तो समय पटल पर दो कदमों को धारण करता है, प्रेम व सेवा, और अपने हर कदम पर वह अधिक प्रेम व अधिक सेवा से अपने पूर्व निश्चित संकल्प को पूर्ण करता है। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है कि इन्हीं पद चिन्हों पर अपने कदमों को रखता हुआ अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवान में एकीकार तक पहुंच जाए, यही है असली पाद सेवा। सत्य, परम सत्य, इसी सत्य की भगवान कृष्ण ने भी उद्घोषणा की थी। एक बार की बात है, युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान कृष्ण ने जूठे पत्थर उठाने का कार्यभार संभालकर पांडवों को विनम्रता का पाठ पढ़ाया। इसके पश्चात भी अर्जुन अपने अहंकार को नियंत्रण में न रख सका और उसने भगवान से पूछा, प्रभु इस युद्ध में हमारी विजय के परिणाम स्वरूप तो निश्चय ही आपके अवतरण का अधिकांश उद्देश्य पूर्ण हो गया होगा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, इस युद्ध में विजय के लिए तो मेरा संकल्प मात्र ही पर्याप्त होता, मेरा अवतरण तो कुछ और ही कारणों से था, प्रेम के कारणों से था। पूछने पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव याद कर, जब मैंने मां कुंती से वरदान मांगने के लिए कहा था तो उसने सदैव कष्टों अपमानों और दुखों की ही कामना की थी ताकि वह सदा मुझे याद करती रहे। ऐसे अनोखे वरदान की मांग सुनने के लिए मैं आया था अर्जुन। और याद करो उन क्षणों को अर्जुन जब मैंने तुम्हें कर्ण का वध करने के लिए कहा था जबकि उसका रथ मिट्टी में धंस गया था। तुम्हें नहीं मालूम कि उसकी सदैव मुझसे यही प्रार्थना थी कि प्रभु मैं आपके छत्र के तले धर्म की ओर से युद्ध ना कर सका, यह जीवन आपके समक्ष नहीं बीता हे प्रभु, परंतु मेरी ये प्रार्थना है कि जीवन के अंतिम क्षणों में आप मेरे समक्ष हों। उस प्रार्थना के लिए ही मैंने तुम्हें उस समय मेरे समक्ष होने पर उसका वध करने के लिए कहा था। मैं एक दानवीर की इस प्रार्थना को सुनने के लिए आया था अर्जुन। मैं भीष्म की शरणागति को देखने के लिए आया था जब मेरे शस्त्र उठाने पर उसने मृत्यु का आवाहन कर खुशी खुशी अपने शीश को सहर्ष मेरे कदमों में रखना स्वीकार किया था। मैं द्रौपदी के अचल विश्वास का साक्षी बनने के लिए आया था अर्जुन। और अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु पर तुम्हारे अश्रुओं से गीले अपने वस्त्रों में करुणा के अमृत को चखने के लिए आया था। भगवान अवतरित होते हैं, पर क्यों अवतरित होते हैं? वे अवतरित होते हैं प्रेम और उदारता के परम उदाहरण को मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत करने के हेतु। इस प्रेम को मैंने भी भगवान बाबा के हर विचार शब्द और कार्य में देखा है। उनकी बस एक ही इच्छा है और वह है हमारी उन्नति, हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता। और इसके लिए प्रभु हमें जागृत या स्वप्न दोनों अवस्थाओं में निर्देश करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए सांसारिक संतुलन अनिवार्य है, इसलिए प्रभु हमारे सगे संबंधियों की भी रक्षा करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व की बात है, उस समय मैं अपनी पीएचडी कर रहा था और भगवान हर रोज की तरह हमारे करीब आकर हमसे वार्तालाप कर रहे थे। अचानक एक रिसर्च स्कॉलर को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, अरुण तुम्हारी मदर को शुगर का प्रॉब्लम है ना? हां स्वामी, उसने कहा। फिर भी वो स्वीट्स खाती हैं, मिठाई खाती हैं। कल मैं उनके ड्रीम में गया था, बोला कि स्वीट्स को नहीं खाओ, पर वो हमारी बात नहीं सुनती। तुम आज उनको फोन करके बोलो कि स्वामी ने स्वीट्स खाने के लिए मना किया है। हम सब स्तब्ध रह गए भगवान की ये बात सुनकर, और ये कहकर भगवान बाबा इंटरव्यू रूम की तरफ मुड़ गए। मैंने उस छात्र को कहा, मैंने कहा इसी समय घर को फोन लगाकर मां से ये प्रश्न पूछो। वापिस आकर उसने बताया कि सत्य में भगवान पिछली रात उनकी मां के स्वप्न में गए थे और कहा क्योंकि मेरे कहने के पश्चात भी तुमने स्वीट्स खाना बंद नहीं किया, इसीलिए कल तुम्हारे पुत्र को मैं फोन करने के लिए कहूंगा। और ऐसा ही हुआ और इसका मैं साक्षी था। क्या इसे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी प्रेममयी साई मां प्रतिक्षण हमारा शुभ सोचती हैं, हमारी सब प्रार्थनाओं को सुनती हैं? उनके सिवा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है ही कौन? मैं अनुभव कर चुका हूं। एक बार की बात है, ग्राम सेवा संपन्न होने के बाद भगवान हमसे अति प्रसन्न थे और भगवान ने कहा अपने अनुभवों का वृतांत सब भक्तों को बताओ, पर मुझे कहा गया कि मैंने कुछ लाइनें पढ़कर सुनानी हैं, मुझे याद करके सुनानी है, और यह मेरे लिए बहुत कठिन था। परंतु कोशिश करने के बावजूद भी मैं उन लाइनों को सही प्रकार से याद नहीं कर सका। प्रोग्राम के पिछले दिन भी जब प्रैक्टिस करवाई गई तो उस समय मैं अपनी लाइनों में चूक गया। सब लोग बहुत चिंतित हो गए कि कल क्या होने वाला है भगवान के समक्ष। उस शाम को मैं हिलव्यू स्टेडियम में घूमने के लिए गया और मैंने भगवान हनुमान की इतनी बड़ी मूर्ति देखी। मैंने कहा, हे हनुमान, आपने भगवान राम के कितने कार्य सिद्ध किए, कितने कितने बड़ी श्रृंखलाओं को और पहाड़ों को आपने उठाया, क्या मेरी आप एक प्रार्थना नहीं सुनेंगे? मुझे आपके भगवान साई राम के लिए कुछ शब्द कहने हैं कल, क्या उन्हें याद करने में आप मेरी सहायता नहीं करेंगे प्रभु? और मैंने कहा, प्रभु अगर कल प्रोग्राम में मैं अपनी लाइन्स नहीं भूला तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि 7 दिनों तक आपके पास आकर प्रदक्षिणा करूंगा। अगले दिन भगवान हनुमान या भगवान साईराम की कृपा से प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो गया और भगवान हमसे बहुत प्रसन्न थे। अगले दिन अपने निश्चय के अनुसार मैंने हनुमान की मूर्ति के पास जाकर प्रदक्षिणा करनी शुरू कर दी। इस प्रकार 6 दिन बीत गए और 7वां दिन आ गया, मेरे निश्चय का आखिरी दिन। उस दिन प्रदक्षिणा करते हुए मैंने दूर से ही भगवान के भवन को देखा और मैंने कहा, भगवान मैं प्रदक्षिणा यहां पर कर रहा हूं, आपसे कितनी दूर, क्या आपको मेरी यह प्रार्थना पहुंच रही है? मेरी प्रार्थना का उत्तर कौन देगा भगवान? क्या यह हनुमान की मूर्ति देगी या आप देंगे? मैं जानना चाहता हूं। प्रदक्षिणा होने के बाद मैं नीचे आने लगा और कुछ समय के पश्चात मैंने सुना कि भगवान की जीप के साथ चलने वाली सिक्योरिटी जीप का सायरन बज रहा है, तो मैंने कहा शायद भगवान सुपर हॉस्पिटल जा रहे होंगे। परंतु कुछ देर बाद मैंने ये देखा कि भगवान की कार तो हिलबी स्टेडियम के अंदर प्रवेश कर चुकी है और कुछ समय के पश्चात देखा कि भगवान की कार तो हिल व्यू के ऊपर आ रही है और मैंने क्या देखा कि भगवान की कार तो ऊपर की तरफ आ रही है जहां पर कि मैं था। कुछ क्षण के बाद भगवान की कार धीरे धीरे करती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई और भगवान ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और मुझे उंगली से अपने पास आने के लिए कहा। मेरा दिल बहुत धड़क रहा था। मैंने कहा, कॉलेज का टाइम होने वाला है, 1/2 घंटा रह गया है और मैं यहां पर दूसरे वस्त्रों में, कॉलेज इतनी दूर, भगवान क्या कहेंगे, क्या मुझे डांटेंगे? भगवान बाबा ने मुझसे पूछा, दीपक इधर क्या करता है इस समय? मैंने कहा, भगवान हनुमान की प्रदक्षिणा करने के लिए मैं आया था। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपना आभे हंसी दिया और कहा, बहुत खुशी, बहुत खुशी, और वहीं से ही मुड़कर दोबारा मंदिर की ओर चले गए। मैं स्तब्ध रह गया, भगवान इतनी दूर आए फिर भी ऊपर तक नहीं गए, यहीं से वापस मुड़ गए, इसका क्या अंतरार्थ है? शाम के समय भगवान बाबा ने हमें फिर से बुलाया और मुझसे पूछा, क्या तुम्हें हनुमान बहुत प्रिय है? मैंने कहा, हां भगवान, हनुमान मुझे प्रिय है। भगवान ने अपना हाथ घुमाया और कुछ ही क्षण में उनके हाथ में चमचमाता हुआ एक सोने का लॉकेट और एक सोने की चेन थी, जिसके अंदर में हनुमान की वही मूर्ति है, वही प्रतिमूर्ति है जो कि हिलव्यू स्टेडियम के ऊपर में स्थापित है। मैं समझ गया कि भगवान मेरी प्रार्थना का उत्तर दे रहे थे। उनसे मैंने पूछा कि भगवान ये मेरी प्रार्थनाएं कौन सुनता है, क्या हनुमान सुनेंगे या आप सुनेंगे? और भगवान ने मुझे ये निश्चित रूप में मुझे ये दिखाया कि वही सब प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। एक और ऐसा ही अनुभव मुझे याद आता है इस समय कि हम दर्शन के लिए बैठे हुए थे और भगवान अपने इंटरव्यू रूम के बाद में जब हमारे करीब आए तो मैंने भगवान बाबा के चरणों को छुआ। कितना सुलभ था ये सब एक समय, पर कभी आशा नहीं थी कि हम भगवान के चरण कमल के दर्शन से या उनके स्पर्श से वंचित भी रहने वाले हैं। जो भी है, भगवान हमारे समक्ष में आए, जब मैंने भगवान के चरणों को छुआ तो मैंने पाया कि भगवान के चरण तो बहुत गर्म हैं, जैसे कि उन्हें बुखार हो। जब मैंने भगवान की ओर देखा, उनके दिव्य चेहरे की ओर, तो देखा कि भगवान की आंखें कुछ लाल हैं और जब भगवान ने हमसे बात की तो उनका कुछ गला भी साफ नहीं था, जैसे कि उन्होंने कुछ अपने ऊपर किसी और के कर्म ले लिए हों। और हम सतर्क हो गए और हमने कहा, भगवान आपने किसी और का कर्म अपने ऊपर लिया है स्वामी? भगवान ने, कुछ नहीं, तुम बैठ जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं खड़ा हुआ, मेरी आंखों में कुछ आंसू थे, मैंने कहा, नहीं भगवान, आज आप स्वस्थ नहीं है, भगवान आप बताइए आपने किसका कर्म अपने ऊपर लिया है। सैकड़ों बारों में से शायद एक बार ऐसा हो कि भगवान ये प्रत्यक्ष कर दें कि वे कितने ही लोगों के, कितने ही भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और उन लोगों को मालूम भी नहीं चलता होगा। मेरे आग्रह करने पर, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी मां से आग्रह करता है, भगवान बाबा ने कहा, हमारा हॉस्पिटल में एक मुस्लिम स्त्री आई और वो विधवा थी और उसका 6 मास का एक छोटा बच्चा था जिसके हृदय में एक होल था, जिसका हृदय ठीक नहीं था। वह कई जगह पर गई और प्रार्थना करी कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन किया जाए, उसके प्राणों की रक्षा की जाए, पर सब लोगों ने उसे इनकार कर दिया, क्योंकि ना तो उसके पास में देने के लिए रकम थी और ना ही उन्हें लगा कि इस बच्चे के बचने के कुछ खास आशाएं हैं। जब डॉक्टर भगवान बाबा के पास में और उन्होंने कहा, भगवान इस तरह से एक मुस्लिम स्त्री आई है अपने बच्चे को लेकर और ऑपरेशन बहुत कठिन है, बच्चा बहुत छोटा है, तो भगवान ने उन्हें कहा कि चाहे कोई भी उसे इनकार करते, हमारे हॉस्पिटल में उसे इनकार नहीं किया जाएगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ऑपरेशन किया गया, 6 घंटे का ऑपरेशन 6 मास के बच्चे पर, और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। बच्चे के प्राणों की रक्षा हुई, मां के चेहरे पर मुस्कुराहट दोबारा से आ गई। परंतु उसका कष्ट किसने लिया? भगवान बाबा ने कहा वह इतना छोटा बच्चा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन सह नहीं सकता है, इसलिए मैं अपने ऊपर उसके कष्टों को लिया। परंतु मैं बहुत खुश हूं क्योंकि बच्चे का जीवन दान हो गया और उसकी मां भी प्रसन्न है। मैंने सोचा कि यहां से जाने के बाद वो मुस्लिम स्त्री क्या कभी भगवान बाबा को नमस्कार भी करेगी? वो तो अपने अल्लाह का धन्यवाद करेगी, पर जब अल्लाह को पुकार की जाती है तो जवाब कहां से आता है? जब ज़ोरास्ट्र को लोग पूछते हैं तो जवाब कहां से आता है? जब ईसा मसीह को लोग पूछते हैं तो जवाब कौन देता है? जवाब सत्य साई बाबा देते हैं पुटापर्ती से। ये मेरा दृढ़ निश्चय है और ये मैंने देखा है। क्योंकि हम कहीं भी हों, हम पुटापर्ती में हों या इस संसार के किसी भी कोने में हों, भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, भगवान बाबा से मेरा कुछ समय पहले ही परिचय हुआ था। तो एक दिन अपने पिताजी के साथ में बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था और जब भी कोई बस आती तो मैं पूछता, पापा इसका नंबर क्या है? तो मेरे पिताजी ने कहा, तुम्हारी आंखों को जरा चेक करवा लेते हैं। और मालूम चला कि नेगेटिव 1.5। एक महीने के बाद नेगेटिव 2.5। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मैंने कहा, भगवान अगर इस तरह से नंबर मेरा बढ़ता गया तो मुझे तो कुछ समय के बाद दिखाई नहीं देगा, मेरी रक्षा करिए भगवान, रक्षा कीजिए। उस समय मेरी मां के भी कमर में दर्द बहुत रहता था। उसी रात को भगवान मेरे स्वप्न में आए। मैं क्या देखता हूं कि एक लंबी सी गुफा है और भगवान दूर खड़े हैं कोने में, और मेरे हाथ के अंदर में आरती की प्लेट है और मैं भगवान को आरती दे रहा हूं, और उसकी रोशनी से भगवान का चेहरा जगमगा उठता है और भगवान बहुत यंग, बहुत उज्जवल और बहुत प्रकाशमय दिखाई दे रहे हैं। भगवान बाबा अपने गालों को फुलाकर मेरी तरफ हवा फेंकते हैं और उस हवा के अंदर में विभूति है जो मेरी आंखों में प्रवेश कर जाती है, और मेरी मां जो सपने के अंदर में मेरे साथ थी उनको मैं दिखाता हूं, देखो मां भगवान बाबा ने विभूति से मेरी आंखों को ठीक कर दिया। और वो समय है 15 वर्ष पूर्व, और आज समय है कि अभी मेरी आंख का नंबर कभी दोबारा बड़ा नहीं है, क्योंकि भगवान हर पुकार को सुनते हैं। भगवान का तत्व क्या है यह हम देख पाते हैं काफी नजदीक से कोड़े कनाल के अंदर में। छोटे छोटे उदाहरणों से भगवान हमारे अंदर में इस बात को प्रवेश कर देते हैं कि वे ही दिव्यता की मूर्ति हैं। एक बार भगवान बाबा अपने कमरे से बाहर निकले और हमारे समक्ष आकर खड़े हुए, तो उन्होंने एक छोटे कद के एक बच्चे को अपने साथ खड़े होने के लिए कहा। फिर भगवान बाबा ने उस बच्चे से पूछा, बताओ हम में से किसका कद ज्यादा है, तुम्हारा या हमारा? वह बच्चा कुछ ना बोल सका, सोचता रहा। तो फिर उसने सोचकर कहा, भगवान आप बड़े हैं स्वामी। भगवान ने कहा, नहीं, अणोरणीयान महतो महीयान, मैं छोटे से भी छोटा हूं और बड़े से भी बड़ा हूं। इसलिए इस अणोरणीयान महतो महीयान भगवान की पहुंच हर जगह है, हर क्षण है, हर किसी के पास है। वे मृत्यु को जीवन में बदल सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जब मुझे मालूम चला कि एक 7 साल का बच्चा जो हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था बहुत बीमार हो गया, उसका बहुत इलाज कराया गया, डॉक्टर्स को बुलाया गया, हर तरह का उपचार किया गया, परंतु उसकी परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रही, तब भगवान को बताया गया कि भगवान इस तरह से एक बच्चा है 7 साल का जिसकी बीमारी हमारे नियंत्रण में नहीं आ रही है, भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। यह बात हो गई, इसके बारे में अनभिज्ञ था। एक दिन मैं क्या देखता हूं कि कुछ बच्चे प्राइमरी स्कूल से बाबा के समक्ष आकर बैठे हैं बर्थडे ब्लेसिंग्स के लिए, और बाबा उनसे पूछते हैं कि बच्चों बताओ तुम्हारी उम्र क्या है। तो एक बच्चा बोलता है, स्वामी मेरी उम्र 7 साल है। भगवान ने कहा, नहीं 7 साल नहीं, सिर्फ 15 दिन, और ये जनवरी 15 की बात है। मुझे बाद में मालूम चला कि जब परिस्थिति बहुत बिगड़ गई तो इस बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया गया जनरल हॉस्पिटल के अंदर में। पर ये बच्चा बार बार कहता कि भगवान बाबा ने मुझे स्वप्न में कहा है कि वह नए साल के दिन मेरे पास आएंगे और मेरे पास बैठकर मेरा इलाज करेंगे, मुझे विभूति देंगे। पर भगवान बाबा के हॉस्पिटल में आने की कोई सूचना नहीं थी। बच्चा बार बार पूछता डॉक्टर आंटी से, आंटी क्या बाबा आने वाले हैं, नए साल में वो आएंगे ना। डॉक्टर कहती, बेटे अगर हमें मालूम चलेगा तो हम पहले आपको ही सूचित करेंगे। जनवरी 1 का दिन, भगवान बाबा के हॉस्पिटल आने की कोई सूचना नहीं थी। भगवान बाबा दर्शन के लिए आए और अपने ड्राइवर से कहा, सीधा हॉस्पिटल ले चलो। भगवान बाबा इस बच्चे कमरे में आए, उसको देखा, आशीर्वाद दिया और चले गए। तो बच्चा रोने लगा। उसने कहा, बाबा स्वप्न आपने दिखाया था कि आप मेरे पास आकर बैठेंगे और मुझे विभूति भी देंगे, परंतु आप तो मेरे पास आकर नहीं बैठे हैं स्वामी। तो बाबा उसको लेकर वापस उस कमरे में आए, उसको लिटाया एक मां की तरह से, और अपना एक हाथ उसके पेट पर रखा, एक हाथ उसके माथे पर रखा, और विभूति सृजन करके उसके मुख में डाली और कहा, चिंता मत करो मैं सब कुछ देख लूंगा। और 15 जनवरी को जब भगवान बाबा ने यह कहा कि नहीं तुम्हारी उम्र 7 साल नहीं, सिर्फ 15 दिन मात्र है, तो सब लोग हंसे, परंतु मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने पहचाना और जाना कि भगवान जो कह रहे हैं वह मजाक नहीं, वह एक सत्य है, वह भगवान की कृपा का एक बेहतरीन और बहुत उच्च उदाहरण है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम भगवान की कृपा के भागी बने। एक बार मैंने भी कहा भगवान से, भगवान उस समय हमें अनुमति दे रहे थे कि सुबह हम आए और दर्शन के लिए बैठे भगवान के, उसके बाद अपने कॉलेज के लिए जाएं। भगवान आए और हमारे पास खड़े हुए थे और 8 बजने वाले थे। मैंने कहा, भगवान आपके और हमारे बीच में आज ये क्लासेस आ गई हैं स्वामी, आज ये कॉलेज आ गया है। भगवान ने जवाब दिया, नहीं तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ ये मन आ गया है, ये क्लासेस नहीं आ गई हैं। अगर मन से तुम हमारे पास हो तो चाहे तुम कॉलेज में हो चाहे मंदिर में, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए हमें क्या करना है जीवन में, अगर प्रभु की कृपा पानी है तो हमें अपने मन को वशीभूत करना है। भगवान कहते हैं, मास्टर द माइंड, बी अ मास्टर माइंड। पर ये करने का सरल उपाय क्या है? एक बार भगवान बाबा ने कोडेकनाल में इसी बारे में उपदेश दिया। प्रवचन होने के बाद में शाम को हम सब भगवान बाबा के समक्ष बैठे और भगवान बाबा ने कहा, कोई प्रश्न? तो मैंने कहा, बाबा आपने कहा यू शुड ऑल मास्टर द माइंड एंड बिकम मास्टर माइंड, पर यह करने का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान ने कहा, गुड क्वेश्चन। फिर भगवान बाबा ने जवाब दिया और मैं चाहूंगा कि आप इस जवाब को बहुत ध्यान से सुने। तो भगवान बाबा ने कहा, द इजिएस्ट वे टू मास्टर द माइंड एंड बिकम अ मास्टर माइंड इज टू लव गॉड मोर एंड मोर, टू लव गॉड मोर एंड मोर। फिर भगवान बाबा ने आगे भी कहा, एंड द बेस्ट वे टू लव गॉड इज टू लव ऑल एंड सर्व ऑल। सच कहा है, क्योंकि अगर हमारा मन एक प्याला है तो या तो इसमें प्रेम का अमृत रहेगा या विषयों का विष रहेगा। इसलिए अगर हम प्रेम का चुनाव करते हैं तो हम अपने मन पर निश्चित ही काबू पा सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बहुत आध्यात्मिक साधनाएं की हैं, पर हम ये जान नहीं पाते कि क्या ये सब करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो गई है। हम ग्राम सेवा के लिए जाते हैं, हम और कार्यों में सेवारत होते हैं, हम भजन के लिए जाते हैं, रंग संकीर्तन के लिए जाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, पर हम सोचते हैं शाम को आके कि हमने इतना कुछ किया, क्या इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो गई है? यह प्रश्न हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर आता है। ऐसे ही साधक ने उस समय भगवान बाबा से पूछा कि बाबा ये सब करने के बाद हमें कैसे मालूम चले कि हम उन्नति कर रहे हैं या नहीं? तो भगवान बाबा ने कहा, इसका तो उत्तर बहुत सरल है, शाम को सोने के पहले अपने आप से पूछो, क्या मेरा प्रेम का दायरा बढ़ गया है? क्या मैं अधिक लोगों से अधिक प्रगाढ़ प्रेम करता हूं? क्या मेरा प्रेम निश्चल हो गया है? अगर जवाब है हां तो आध्यात्मिक उन्नति हो गई है, और अगर जवाब है नहीं तो उन्नति नहीं हुई है। इसका सरल उपाय है, भगवान कहते हैं कि अपने हर कदम को मेरे पद चिन्हों पर रखो, जो कि है प्रेम व सेवा। सेवा में प्रेम और प्रेम में सेवा, यही भगवान का संदेश है। हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारे हो जाएं, भगवान हमारे साथ लीला करें। भगवान खुद कहते हैं कि तुम मेरी सेवा नहीं कर रहे हो, बल्कि मैं अपने भक्तों का नौकर हूं, मैं अपने भक्तों का सेवक हूं। यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती थी, हम सब भी अपनी साई मां को बांधना चाहते हैं अपने हृदय के साथ, परंतु बांध नहीं पाते हैं। यशोदा ने बड़ी कोशिश करी, बहुत प्रयास किया, जब भी वह रस्सी लेके आती तो वह दो उंगल छोटी पड़ जाती और वह कृष्ण को बांध नहीं पाती ओखली के साथ में। फिर उसने सब रस्सियों को छोड़ दिया, और जब उसने छोड़ दिया तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को ही ओखल से बांध लिया। हम ऐसा क्या करें, कैसी हमारी शरणागति हो, कैसी हमारी आध्यात्मिक साधना हो कि प्रभु हमारे प्रेम के वशीभूत होकर हमारे हो जाएं? एक दिन की बात है, हम सब लोग तरे वृंदावन में थे और भगवान के समक्ष बैठे हुए थे। भगवान ने सकुबाई की कहानी सुनाई और कहा कैसे उसने भगवान कृष्ण को अपना बना लिया था। भगवान कृष्ण उसके लिए आटा तक पीसते थे, उसके लिए उसका रूप धर के उसकी सांस से डांट भी खाते थे। तो भगवान बाबा ने कहा, तुम में से कौन कौन विद्यार्थी मुझे ऐसे अपना बनाना चाहेंगे? तो सबके हाथ फौरन खड़े हो गए। भगवान बाबा ने कहा, ये देखो, ये जो मेरा झूला है इसमें एक पटल है और इसके अंदर में संगले हैं, दो संगले हैं। इस संगल को देखो, ये एक से एक बंधी हुई है आपस के अंदर में। अगर कहीं भी जोड़ नहीं होगा तो ये संगल नहीं रहेगी, झूला टूट जाएगा। इसी प्रकार अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो संगल मिल जाए जिससे कि तुम मुझे बांध सको, तो वो संगल है राम नाम की, राम राम राम। इस संगल से तुम मुझे बांध लो और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। पर याद रखो, अगर इस राम नाम का जब छूट जाएगा तो मैं फिर भाग जाने में सक्षम हूं। भगवान बाबा का संदेश भगवान की गीता के संदेश से कुछ भिन्न नहीं है। जब भी हम एक आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ें तो हम उसे किस भाव से पढ़ें? उसके अंतर्भाव से पढ़ें। अर्जुन कौन है? हम सभी अर्जुन हैं। ये महाभारत युद्ध कहां हो रहा है? भगवान कहते हैं ये हमारे अंदर ही हो रहा है। हमारा अहंकार ही हमारा दुर्योधन है, और हमारा अंतर्भाव पुण्य भाव जो हमारा है, सद्भाव जो हमारा है, वही हमारे कृष्ण है अंदर। हमें सब अपनी इंद्रियों को भगवान के हाथ में दे देना है और इस रणभूमि में विजय को प्राप्त करना है। अर्जुन ने भी युद्ध किया, गीता के सुनने के पूर्व भी युद्ध उसने करना चाहा, और गीता के सुनने के बाद भी उसने युद्ध किया। वही अर्जुन, वही बाण, वही कौरव और वही युद्ध। युद्ध में कुछ बदलाव नहीं आया। अगर अर्जुन युद्ध करता है प्रतिशोध के लिए, राज्य के लिए, अपनी शूरवीरता को दिखाने के लिए, तो उसका मार्ग जाता है सीधा नरक की ओर। पर भगवान बाबा के, पर कृष्ण के उपदेश को सुनने के बाद में उसका भाव बदल गया। उसने युद्ध किया, पर किसके लिए? हर बाण पे कृष्ण का नाम लिखकर उनको अर्पण करते हुए किया, और उसका मार्ग खुल गया स्वर्ग में जाने का, कृष्ण के चरणों में विलीन हो जाने का। इसी प्रकार से हमें अपने हर कार्य को, अपने हर कर्म को, चाहे वह कॉलेज में हो, चाहे वो रसोई घर में हो, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, अगर हम ये समझकर करें कि यह कर्म हम भगवान के लिए ही अर्पित कर रहे हैं, सर्वम साईश्वरार्पणमस्तु, तो यह कर्म हमें आध्यात्म के मार्ग पर ले जाएगा और हमें भगवान तक ले जाने में सक्षम हो जाएगा। जो आज हमें सुअवसर प्राप्त है भगवान के सानिध्य का, आश्चर्य होता है। एक बार एक शिक्षक ने पूछा भगवान बाबा से दर्शन के समय कि भगवान पूर्व समय में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद ऋषियों को सिर्फ आपकी झलक मात्र प्राप्त होती थी, परंतु आप तो हमें हर रोज आपका दर्शन, संभाषण और स्पर्शन प्रदान कर रहे हैं। प्रभु, यह बात हमारे समझ में नहीं आती है कि ये सब होना किस प्रकार से संभव है। तो भगवान बाबा ने कहा, याद रखो कि तुम्हारे सर्व पूर्व जन्मों के सब पुण्य कर्म मेरे प्रथम दर्शन के बाद ही समाप्त हो जाते हैं। तो शिक्षक ने फिर पूछा, भगवान तो फिर ये क्या कारण है तो हमें इतना कुछ आपसे प्राप्त हो रहा है? तो भगवान बाबा ने कहा कि उसके पश्चात सिर्फ मेरी कृपा और मेरी कृपा है। हमें भगवान की अनंत कृपा प्राप्त हुई है। तो हमारा ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम अपने जीवन को भगवान की शिक्षाओं के प्रकार से ढालें। भगवान कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान एक दिन कहें कि नहीं, तुम्हारा जीवन भी मेरा संदेश है। इसलिए इस प्रेम के भाव को, इस प्रेम के आदेश को, जैसे भाव नहीं है, ये आदेश है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर मेरी सब शिक्षाओं को अगर तुम्हें एक शब्द के अंदर में कहना हो तो वह शब्द है प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान नहीं टलते देखा। अगर हम प्रेम के पथ पर अग्रसर हैं तो भगवान हर क्षण हर पल हर समय हमारे साथ हैं। जय श्री राम।
साई राम। यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। अभी आपने श्री सत्य साई महाविद्यालय में प्रबंधन विभाग के शिक्षक डॉक्टर दीपक आनंद जी के अनुभवों का प्रसारण सुना। अब प्रस्तुत है भगवान बाबा द्वारा गाया गया एक भजन, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं।
भजन बिना सुख शांति नहीं,
भजन बिना सुख शांति नहीं,
साईं भजन बिना सुख शांति नहीं,
साईं भजन बिना सुख शांति नहीं,
हरि नाम बिना आनंद नहीं,
साईं नाम बिना आनंद नहीं,
हरि नाम बिना आनंद नहीं,
साईं
परम
यह रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। भगवान बाबा के इस भजन के पश्चात अब प्रस्तुत है पत्रम पुष्पम फलम तोयम में निहित गूढ़ अर्थ पर एक वार्ता। वार्ताकार हैं श्री रविन्द्र जी ग्रोवर।
श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्युपहातम अश्रामि यथात्मनः। अर्थात जो भक्त मुझे पत्र अर्थात पत्ता, पुष्पम अर्थात फूल, फलम फल, तोयम जल जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है, मैं ग्रहण करता हूं या मैं खाता हूं। अंत में कहा गया प्रियात्मनः अर्थात उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का मैं अर्पण किया हुआ पत्ता, फूल, फल, जल ग्रहण करता हूं। अब आप जरा सोचिए, भगवान कह रहे हैं भाई अगर तुम मुझे प्रेम से, भक्ति से, निष्काम बुद्धि से मुझे पत्ता भी दे दो ना, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। फूल दे दो, फल दे दो, यहां तक कि मुझे जल भी दे दो। आप विचार कीजिएगा कि क्या हम परमात्मा को इनमें से कोई भी चीज अर्पित कर रहे हैं? एक लड़का एक परीक्षा देने गया, परीक्षा पत्र एग्जाम पेपर उसके सामने आया, उसने वहां पर लिखे हुए प्रश्नों को देखा, पसीना आ गया, अरे बाप रे मेरे को इसमें से कोई उत्तर नहीं मालूम, मैं क्या करूं। वो बैठकर भगवान से मन्नत करने लगा, हे परमपिता परमेश्वर मेरी बुद्धि में विराज जाओ, हे भगवान मुझे इन प्रश्नों के उत्तर बताओ, मैं आपके लिए बहुत स्वादी हलवा बनाकर मंदिर में चढ़ाऊंगा। हम कई बार ऐसे करते हैं, मन्नत मांगते हैं, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा, वो काम हो जाए तो ये करूंगा, एक प्रकार से भगवान से बिजनेस डील करते हैं। ये लड़का एक बार फिर से अपने प्रश्नों पर गौर करने लगा, जोर लगाया बुद्धि पर, और धीरे धीरे प्रश्नों के उत्तर उसके सामने आने लग गया। याद आ गया जो एग्जाम उसका, जो उसकी परीक्षा 3 घंटे में समाप्त होनी थी उसने 2-2.5 घंटे में समाप्त कर दी, अब आधा घंटा बचा हुआ है। अब मन में विचार कर रहा है, देखो भगवान ने मुझ पर इतनी दया करी है, अब मुझे भगवान को हलवा तो चढ़ाना ही चाहिए। वो बैठा हुआ हिसाब लगा रहा है कि हलवा बनाने में मुझे क्या क्या सामान चाहिए, सूजी, पानी, चीनी, ड्राइड फ्रूट, कुछ सुगंधित चीजें आदि आदि। फिर हिसाब लगाया भाई इसमें क्या खर्चा आएगा, खर्चा आ गया कोई मान लीजिए 10-15 रुपए का। क्या बात करते, 10-15 रुपए हलवे में खर्च कर दूंगा, होना क्या है, हलवा लेके मैं मंदिर में जाऊंगा, पुजारी जी मूर्ति के आगे रखेंगे, कौन सी मूर्ति हलवा खा लेगी, होना यह है कि वो हलवा बाकी भक्तों में बांट दिया जाएगा, बहुत महंगा है, मैं क्या करूं। ऐसे कहते हैं भगवान मैं आपके लिए कुछ फल खरीद लेता हूं। हिसाब लगा रहे आम का क्या दाम चल रहा है आजकल, 120 रुपए किलो, बड़े महंगे हैं यार तो। अच्छा केले का क्या दाम है, बेर का क्या दाम है, فالتے کا کیا دام ہے؟ بڑا مہنگا پڑتا ہے. پھر اچانک یاد آیا بھگوان کشن نے سنگم تو کہا ہے پترم پشپم فلم تو یم یو میں بھکتیا پچتی تدہم بھکتیا پہتا مشرامی پیتاتمنا. بھگوان نے سوے کہا ہے کہ جو بھکت مجھے نشکام بدھی سے پریم پوروک سے پتا پھل پھول پانی بھی دے دے میں اس سے گرہن کر لیتا ہوں. پانی پانی واٹر تویم میں ابھی پاگل ہوں. ایسے کرتے ہیں میں بھگوان کو پھل دے دوں گا. پھل کے بعد کا پھل مہنگے لگے سوچا ایسے کرتے ہیں بھگوان کو میں کچھ پھول ارپت کر دوں گا. پھر سوچا پھول میں توڑوں گا جا کے باہر بگیچہ خراب ہوگا. اگر میں پتے بھی توڑتا ہوں تو بھی میں پرکرتی میں جو سندرتا پتے بڑھا رہے ہیں وہ خراب کر رہا ہوں. ایسے کرتا ہوں جلی پلا دوں گا. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں سامنے تھے گھنٹی بجی. ایگزام پیپر واپس کرنا تھا. ٹیچر سامنے آیا اور جلد بازی میں اس نے آنسر شیٹ کی بجائے کوشچن پیپر واپس کر دیا اور آنسر شیٹ گھر لے کر آ گیا. جیسے گھر پہنچے پتا جی بولے بیٹا ایگزام کیسا ہوا؟ پتا جی بہت اچھا ہوا. بولے بیٹا ذرا پیپر تو دکھاؤ کیا کوشچن آئے تھے. لڑکے نے کوشچن پیپر نکالا دیکھا کوشچن پیپر تو ہے نہیں آنسر پیپر لے کے آ گیا ہوں اور اپنا سر پیٹ کے بیٹھ گیا. ہمارے ساتھ یہ نتیہ ہوتا ہے کہ ہم کئی منتیں مانگتے ہیں بھگوان سے لیکن جیسے ہماری اچھا پوری ہوتی ہے وہاں سے ہم 9 to 11 ہو جاتے ہیں. لیکن بھگوان کرشن نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ آپ میرے کو پھل دو پتا دو جل دو یا پھول دو. ہم شلوک کے آنترک ارتھ کو نہیں سمجھ پائے. پترم پتا کیا بھگوان آپ سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم مجھے وہ پتا دو جو ورش پہ لگتا ہے؟ بھگوان کو پتوں کی کمی ہے؟ بھگوان کو پھل کی کمی ہے؟ بھگوان کو جل کی کمی ہے کیا جس نے ساری سرشٹی کی رچنا کر دی وہ آپ سے مانگنے آئیں گے کیا؟ یہ ایک سندیش دے رہے ہیں کہ مانو کا شریر ایک پتے کے سمان ہے. جس پرکار سے ہم پتے کو پیڑ میں سے ورکش سے توڑتے ہیں اس کو دوبارہ وہاں نہیں لگا سکتے اسی پرکار سے بچے کو ماں کے گرب سے نکالا جاتا ہے امبیکل کورڈ کو کاٹا جاتا ہے. پتے کی بھانتی آپ اپنی ماں کے گرب سے باہر آ جاتے ہو جہاں آپ دوبارہ پرویش نہیں کر سکتے. پتا ایک بار پیڑ سے ٹوٹ جائے اس کے بعد دھیرے دھیرے مرتیو کی اور جا رہا ہے. آپ بھی جب جنم لے لیتے ہیں ایک بار ماتا کے گرب سے باہر آ جاتے ہیں آپ کا مرجھانا آرمبھ ہو جاتا ہے. یو آر مارچنگ ٹوورڈز دا سیمیٹری کریمیشن گراؤنڈ. آپ کی دوڑ شروع ہو گئی ہے شمشان جانے کی اور آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے دل کی دھڑکن ہے وہ ڈرم بجا رہی ہے اور انت میں آپ کا یہ شریر مٹی میں مل جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ مطلب کیا بھگوان کو پتا ارپت کرو کیا مطلب ہوا؟ آپ کا شریر ایک پتے کی بھانتی ہے. جب آپ کا یہ شریر یا آپ کا یہ پتا یا شریر نامک پتا جب مرجھا جائے گا جب بوڑھا ہو جائے گا تو کیا اب تب جا کے اس کو بھگوان کو ارپت کریں گے؟ اب تب بولیں گے بھگوان میں آپ کو یہ اپنا شریر دیتا ہوں؟ جب آپ جوان ہیں آپ کے اندر جوش ہے ہوش کو بھی لے کے آئیے اور اس پتے کو اس شریر کو پرماتما کے کام میں لگائیے. آپ کو سڑی ہوئی گلی اچھی پرماتما کو نہیں دیتے ہیں. جب آپ کا شریر سڑ جائے گا گل جائے گا بولے بھگوان آئی وانٹ ٹو آفر مائی باڈی ٹو یو میں اپنا شریر آپ کو ارپت کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کے اندر فلنس ہے، فریشنس ہے، تو اپنے شریر کو پرماتما کے کام میں لگا دیں، ارتھات اس شریر سے آپ جو بھی کرم کرتے ہیں وہ کرم پرماتما کے لیے ہو. کہنے کا تاتپر ہے اسپرچلائز یور ایوری ایکٹیویٹی پرفارم بائی دا باڈی. اپنے شریر سے آپ جو بھی کرم کرتے ہیں وہ ادھیاتمک ہو. آپ کھانا بنا رہے ہیں گھر میں، کھانا چاہے آپ اپنے پریوار کے لیے بنا رہے ہو، لیکن من میں یہ دھارنا لے کے بنائیں کہ یہ بھوجن میں پرماتما کے لیے بنا رہا ہوں. گھر میں صفائی کر رہے ہیں، صفائی کیجئے، لیکن سوتے ہوئے یہ پرماتما کی صفائی کر رہے ہیں. گھر نہیں، میں اپنے شریر کو اپنے من کو بھی صاف کر رہا ہوں. آپ کہیں جا رہے ہیں گاڑی میں، کلپنا کیجئے پرماتما آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں پرماتما کو کہیں لے کے جا رہا ہوں، بھگوان کو میں ڈراپ کر رہا ہوں، بھگوان کو میں پک کر رہا ہوں. سارے کرم آدھیاتمک ہو جائیں، من میں وہ وچار آنے ہیں پرماتما کو ارپت کرتے جاؤ. مندر میں جا کے دو پل کے لیے سر کو جھکا دیا، لیکن اہنکار ہمارا آج بھی ویسا بلند ہے، ہمالیہ کی اونچائیاں کے اس پہ اونچا. پھر بولا بھی بھگوان نے کہ مجھے تم پھول ارپت کر دو. بھائی یہ پھول کیا ہے؟ یہ کوئی گیندے کا پھول یا کمل کا پھول نہیں ہے. پھول کا ارتھ ہے ہردے، ہارٹ. اپنے دل کو پرماتما کو ارپت کر لو. آپ کے دل میں دنیا بھر کی وستوں کے لیے پریم ہے، آپ وہ وستوں پانا چاہتے ہیں، نئی گاڑی، نیا مکان، نئی پتنی، نیا پتی، نئے بچے، لیکن پرماتما کو پانے کی تڑپ وہ نہیں ہے. پھول کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ہوتا ہے، پھول میں سے سگندھ آتی ہے. اگر کوئی کمرے میں آئے، گلاب کا پھول کہیں کونے میں پڑا ہو، اس کی سگندھ، اس کی مہک چاروں اور پھیل جاتی ہے، بتانا نہیں پڑتا یہاں گلاب کا پھول ہے. لوگ اندر گھستے ہی بولتے ہیں واؤ کیا سگندھ آ رہی ہے یار. لوگ ایک دوسرے کو برتھ ڈے میں، ویڈنگ اینیورسری میں، سکھ میں یا دکھ میں پھول دیتے ہیں. کیوں؟ پھول آپ کا مرجھایا ہوا چہرے کو کھلا دیتا ہے، خوشی دیتا ہے. تو کیا آپ کا ہردے پھول کی بھانتی کومل ہے؟ کیا آپ کے ہردے سے وہی سگند نکلتی ہے جو پھول سے نکل رہی ہے؟ پھول سب کو برابر سگند دے رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا یہ میرا متر ہے، یہ میرا دشمن ہے، چاہے وہاں کانٹے بھی کیوں نہ ہوں. کانٹوں کو بھی پھولوں کی سگند مل رہی ہے اتنی ہی جتنی باقی لوگوں کو. تو کیا آپ اپنے دل سے نکلے ہوئے پریم کی سگند سب کو برابر دے پاتے ہیں؟ اگر سب کو نہیں، بھگوان کو تو دے دو بھائی. تو کہا گیا، بھگوان کرشن نے کہا بھائی تم مجھے پھول بھی ارپت کر دو، ارتھات اپنا ہردے، اپنی کوملتا، اپنی سگندھ، اپنا پریم مجھے ارپت کر دو، میں تو گرہن کر لوں گا. لیکن بھگوان کہاں ہے؟ کسی مندر میں، گرودوارے میں، مسجد میں، ہمالیہ کی چوٹی میں، ساگر کی گہرائیوں میں؟ سامنے جاتا ہوا مانو، اس کے بھی تو بھگوان نظر نہیں آیا، اور مندر میں پتھر کی مورتی میں بھگوان نظر آ گئے. دھارمک گرنتھوں میں پرماتما نظر آ گئے، لیکن جو جیتا جاتا پرماتما آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے اس میں بھگوان نظر نہیں آئے. تو اپنے ہردے سے سگندھ، آپ کے ہردے سے نکلے ہوئے پریم کو اپنے آمنے سامنے ارد گرد سب کو بانٹے، وہی پرماتما ہے. پھر بولے بھائی دیکھو تم مجھے کا پھل بھی ارپر کر دو، मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। अब फल क्या है? फल क्या है? ये कोई आम, सेब, केला, संतरा, अंगूर, नाशपाती, ये फल नहीं है। जो भगवान कृष्ण फल की बात कर रहे हैं, वह फल है आपका मन। वह आपका मन चाहते हैं जो मीठा हो। भगवान को हम खट्टे फल नहीं देते ना, मीठे फल देते हैं ना। तो मन की मिठास परमात्मा को अर्पित करें। जिस मन में कड़वाहट ना हो, जिस मन में क्रोध ना हो, जिस मन में ईर्ष्या की भावना ना हो, जिस मन में काम ना हो, जिस मन में ये बुराइयां ना हो, हम कच्चे फल भगवान को नहीं देते हैं। जब फल कड़वा है तो कच्चा है। अब देखिए ना, मन की बात देखिए, फल की बात देखिए। पहले आप फल पहले पहले जब उगता है, पहले तो वो पत्ते से होते हैं, पहले पत्ते लगते हैं पेड़ में, पत्ते के बाद वहां फूल बनते हैं, फूल से फिर फल बनता है। तो पहले आप अपने शरीर को साधें, अपने शरीर को परमात्मा के काम में लगाएं। बारंबार वो काम करने से आपकी आदत पड़ जाएगी, आपका शरीर से केवल सात्विक काम होंगे, और अपने हृदय को बारंबार प्रेम भर के परमात्मा को अर्पित करेंगे, हृदय में सौम्यता आएगी, कोमलता आएगी, फिर कहीं जाके आपका मन भी ठीक होगा। मन क्या है? क्या मन? व्हाट इज माइंड? मन इज द बंडल ऑफ डिजायर्स, एक विचारों की गुत्थी। जब बहुत सारे धागे इकट्ठे हो जाएं, गुंजल पड़ जाए, उलझ जाएं आपस में, सुलझे ना, वह मन है। धीरे धीरे एक एक धागे को निकाल के बाहर फेंके। एक बार क्या हुआ कि पुट्टपर्ती में भगवान बाबा के पास कुछ लोग बैठे थे, इंटरव्यू कक्ष में, इंटरव्यू रूम में। भगवान बाबा ने वहां से रुमाल उठाया, कहते ये क्या है? भक्त बोला, स्वामी ये रुमाल है। स्वामी ने रुमाल में से एक धागे को निकाला, कहते ये क्या है? स्वामी ये धागा। स्वामी ने उस धागे को एक डस्टबिन में, कूड़ेदान में डाल दिया। फिर बोले रुमाल की ओर, ये क्या है? स्वामी रुमाल है। स्वामी रुमाल में से एक और धागा निकाला, बोले ये क्या है? स्वामी ये भी धागा है। स्वामी ने उस धागे को कूड़ेदान में डाल दिया। स्वामी ने रुमाल की ओर फिर मुख किया, ये क्या है? स्वामी रुमाल है। स्वामी ने रुमाल में से एक धागे को निकाला, उसको कूड़ेदान में डाल दिया, बोले ये क्या था? स्वामी ये भी धागा था। ऐसे करते करते धीरे धीरे सारा रुमाल समाप्त हो गया। एक एक धागा निकालते गए रुमाल से। स्वामी बोले, ये रुमाल कुछ नहीं, ये रुमाल हमारा मन है, और उसके अंदर धागे जो हैं, ये हमारे विचार हैं। धीरे धीरे इन विचारों को निकाल के आप फेंकते जाएं, तो मन आपका समाप्त हो जाएगा। माइंड नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड। मन को मारना है, मन को मारना नहीं, मन को समाप्त करना है। इच्छाओं से विरक्त होना है हमारे को, वो फल है। भगवान कृष्ण बोले, मुझे तुम जल भी दे दो, मैं प्रसन्न हूं भैया उससे। अब जल का मतलब ये नहीं है कि आप गंगा जल दे दें, या यमुना जल दे दें, या सरस्वती का, या कावेरी का, या कुएं का, या समंदर का। जल का अर्थ है, जब परमात्मा के लिए रोते हैं, आपके आंखों से जो आंसू निकलते हैं, वो परमात्मा के नाम के हों। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, आप एक प्रॉपर्टी पाने के लिए तड़पते हैं, रोते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, हाय मुझे ये मिला नहीं। एक स्त्री को पाने के लिए आपके मन से आहा निकलती है, आंखों से आंसू की धारा होती है, देवदास बन जाते हैं। एक पुरुष को पाने के लिए आप रोते हैं, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए मगरमच्छ के आंसू भी आंख से नहीं आते। ये
अर्थात झूठे आंसू भी नहीं आते। परमात्मा को पाने की वो तड़प क्या ही है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, भाई परमात्मा को पाने के लिए क्या तड़प चाहिए, मुझे तो परमात्मा मिलते नहीं, मैं ढूंढ कर थक गया हूं। गुरु कुछ नहीं बोले। एक बार हर की पौड़ी में गंगा में नहा रहे थे, गुरु ने शिष्य के सर को एकदम से पानी में डाल दिया। शिष्य सांस लेने के लिए तड़पने लगा, लेकिन गुरु उसके सर को पानी से बाहर न निकाले। जब सर बाहर निकाला, ऐसे सांस लेते हुए शिष्य बोला, गुरुजी आपने मेरे को मार ही दिया था, अगर मुझे एक सांस और ना मिलती मैं मर गया होता। मैं सांस के लिए इतना तड़पा कि पूरा जोर लगा के मैंने अपने सर को बाहर निकाला। गुरुजी आप क्या कर रहे थे, मुझे मारना चाहते थे क्या? गुरु बोले, नहीं, उस समय तुम सांस के लिए इतना तड़पे थे, अगर वो तड़प परमात्मा को पाने के लिए होती तो परमात्मा भी सामने आ जाता। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम मेरे लिए रो, भगवान ये कह रहे हैं जब आप परमात्मा को याद करते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, परमात्मा की तड़प में होते हो, अपने आप आपके आंखों से गंगा यमुना की धारा बहती है, वह पवित्र जल वह प्रेम के आंसू परमात्मा तो ग्रहण करते हैं, ग्रहण किया परमात्मा आपके सामने साक्षात रूप में प्रकट होने को क्या है। विचार करें, विचार करें कि आप गीता के इस 9वें अध्याय के 26वें श्लोक पर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्युपहातम अश्रामी प्रयतात्मनः। कुछ तो परमात्मा को अर्पित करें, वो देखिए भगवान आपको अपने पास अपने सामने सुमिरन आपको दर्शन देने वह भी तड़प रहे।
चाहे कुछ भी हमें करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हमें सहना पड़ेगा, हम मना के रहेंगे साई, हम मना के रहेंगे साई। तेरी हम पूजा करेंगे, हमें चरणों में रख लो साई, हमें चरणों में रख लो साई। चाहे कुछ भी हमें करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हमें सहना पड़ेगा, हम मनाते रहेंगे साई, हम मनाते रहेंगे
साई। यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, श्री रविन्द्र ग्रोवर जी द्वारा पत्रम पुष्पम फलम तोयम में निहित गूढ़ अर्थ की व्याख्या करने वाली इस वार्ता के प्रसारण के साथ ही सीधे प्रसारण के अंतर्गत हिंदी भाषा में होने वाला हमारा आज का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हिंदी में हमारा अगला कार्यक्रम पुनः मंगलवार को शाम 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा और अगला सीधा प्रसारण गुरुवार की शाम इसी समय होगा। यदि आप हिंदी कार्यक्रमों को स्वेच्छानुसार सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.radiosai.org/hindibroadcast पर जाकर उन्हें डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। आपके सुझाव एवं टिप्पणियां हमारी उत्तरोत्तर प्रगति में बहुत सहायक होती हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उन्हें ईमेल द्वारा हमें भेजना न भूलें। हमारा पता है listener@radiosai.org। श्रोताओं, रेडियो साई टीम से मैं अभिषेक अब स्वामी से आज्ञा और आप सबसे विदा लेता हूँ। कार्यक्रमों की श्रृंखला को अब विशु भाई अंग्रेजी भाषा में एक बार पुनः आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी की एशिया स्ट्रीम पर हमारा सीधा प्रसारण। धन्यवाद। जय साई राम।